तो आज श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 5 ले रहे हैं और 9 तक जाना है, टिल 9 श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उदारेत आत्मना आत्मानं नात्मनं अवसादयेत् आत्मा एवहि आत्मना बंधु आत्मा एवारिपो आत्मना उदारे दात्मनात्मनं नात्मानं अवसादये आत्मेव हि आत्मनो बंधुर् आत्मेव रिपुरात्मन रिपीट करते हैं आप दोहराते भी हैं कि जस्ट पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं बस। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मेरे पीछे दोहराइए, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। धन्यवाद आपका। तात्पर्य पढ़ रहे हैं श्लोक का। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात उसे इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मनैव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाया विषयासंगो मुक्तेव निर्विषयं मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन को समझ आते हैं, अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ये आखिरी पंक्ति मेरे पीछे दोबारा दोहराइएगा। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। धन्यवाद। ये आगे के अनुवाद पढ़ने नंद किशोर प्रभु पढ़ने आगे के अनुवाद। हाँ ओके, तो आगे के श्लोकों के अनुवाद पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। श्लोक संख्या 7। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। श्लोक संख्या 8। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णता संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना एक समान देखता है। श्लोक संख्या 9। जब मनुष्य निष्कपट हितेशियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ओम अज्ञान्तिमरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा निवितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम पुराण में कहते हैं तस्मादेकन मनसा भगवान सात्मतां पति श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयस्पूज्यश्च नित्यदा। तो भगवत गीता और भागवतम ये एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी उत्पत्ति उस समय में हुई जिस समय एक बड़ी विकट परिस्थिति थी। भागवत गीता कहां गाई गई? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। तो कैसी परिस्थिति थी उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में? कुछ दुख की परिस्थिति थी कि दुख की, चिंताओं की, परेशानी की? तो विकट परिस्थिति में किसका जन्म हुआ? भगवत गीता का। और श्रीमद् भागवतम कब कहा गया? जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला 7 दिन 7 रातों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो श्राप दिया किसका? मृत्यु होने का। और उन्होंने जाके प्रश्न किया ब्राह्मणों से कि ऐसे मनुष्य का क्या कर्तव्य है जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो। तो बड़ी विकट परिस्थिति है कि 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने जा रही है और अगर हमें पता है तो रातों की नींद उड़ जाएगी। तो बड़ी विकट परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम का जन्म हुआ। तो ये पूरी मानव जाति के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 2 साहित्य हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। और दोनों साहित्यों का जन्म एक बड़ी गंभीर और विकट परिस्थिति के अंदर हुआ, कोई सामान्य परिस्थितियों में इनका जन्म नहीं हुआ। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं तस्माद एक न मनसा, कि सिंगल पॉइंटेड एक मन से क्या करना है? भगवान सात्वताम पति। तो एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि करना क्या है मनुष्य जीवन मिलने के बाद। एक मनुष्य को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है एक जीव को, तो उसको अब करना क्या है और कितने समय के लिए करना है? कोई पूछ सकता है ठीक है आप करने के लिए तो कह रहे हैं, हर मंडे आते हैं हमें कुछ करने के लिए ही बोला जाता है, लेकिन कितने समय के लिए? क्या 1 बार 2 बार 3 बार? और किसे करना है, किसके लिए करना है? ये सारे उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हुए कहते हैं भगवान सात्वताम पति, वो भगवान के लिए करना है, किसी सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे वो। वो परम भगवान के लिए करना है, और क्या करना है तो चार काम बताते हैं वो करने को। श्रोतव्य, श्रोतव्य होता है सुनना, जैसे अभी आप बैठ के सुन रहे हैं। कीर्ति तव्यश, कीर्ति मतलब भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, है ना, हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्येयस, ध्येय होता है ध्यान करना। पूज्यस, पूज्यस मतलब पूजा करना, वर्शिप करना। तो ये चार काम करने के लिए वो बोलते हैं, मनुष्यों के लिए विशेषता, कि मनुष्य को ये चार काम करने हैं, और ये भी बताते हैं कितने समय के लिए करने हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना, कि ये तो जान लेते हैं हम कि क्या करना है, लेकिन कितने समय के लिए करना है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो वहां कहते हैं नित्यदा, जैसे होता है एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार, कदा कभी कभी जी, सर्वदा हमेशा, नित्यदा नित्य काल के लिए, जब तक जीव का अस्तित्व है तब तक। तो नित्य काल के लिए क्या करना है, चार चीजें, कौन सी चार, हां, सुनना, भगवान का गुणगान करना, हरि नाम जप, और ध्यान, देहेस, पूज्यस। तो ये चार काम वो कहते हैं एकदा, ऐसा नहीं बोलते कि बस एक बार करो फिर भूल जाओ, या कदा भी नहीं कहते, कभी कभी कर लेना कोई बात नहीं चलेगा, वो कहते हैं नित्यदा, ये चार काम। इस भौतिक जगत में हम चार चीजों से बंधे हैं, कौन सी, हाँ, ये चार नहीं है, इससे भी ज्यादा है, ये सीरीज आगे भी है, आपने उसे शॉर्ट करके चार में कंक्लूड कर दिया। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, किसने बोला था, हाँ, आपने, थैंक यू। चार चीजों से बंधे हैं ना इस भौतिक जगत में, जन्म से फिर मृत्यु आएगा, और बीच में क्या है, दो चीजें और हैं जन्म और मृत्यु के बीच में, वृद्धावस्था और व्याधि, रोग। तो ये चार चीजें हमें बांधती हैं इस भौतिक जगत में, और ये चार का बंधन चार चीजों से खुलता है, ये फोर की सीरीज है पूरी, ये चार का बंधन है और ये चार से ही खुलेगा, और किन चार कामों से खुलेगा, हाँ नहीं, ये चार पुरुषार्थों से खुलेगा। पुरुषार्थ समझते हैं क्या है, क्या, हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चार का बंधन इन चार पुरुषार्थों से खुलता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इस आधुनिक सभ्यता में, तो ये चार नहीं होते, दो होते हैं इसमें से। कौन सा, अर्थ और काम। अर्थ कमाया जाता है किस लिए, काम के लिए। काम मतलब भौतिक इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्थ को प्राप्त किया जाता है, ये दो काम, और क्या छोड़ दिया, धर्म और मोक्ष। जबकि अर्थ और काम बीच में इसलिए आता है कि वो हमें मोक्ष तक लेके जा सके, और वो प्राप्त कैसे होगा, धर्म से। इसीलिए आप देखेंगे 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण थे गोकुल में, तो नंद बाबा के पास कितनी गायें थी, हाँ, सॉरी, 9 लाख, हाँ, 9 लाख गायें, और 9 लाख गायें स्वर्ण मंडित होती थी, रत्नों से जड़ी हुई होती थी। अब वो क्या करते थे, कोई फैक्ट्री चलाते थे, कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ थे, क्या करते थे, वो सरल सा जीवन कर जीते थे, एक वैश्य थे, कृषि करते थे, गायों का पालन करते थे, और इतनी धन संपदा थी उनके पास, क्योंकि धर्म था जीवन में तो अर्थ अपने आप था। आज धर्म नहीं है तो इसलिए अर्थ कभी आता है कभी जाता है, प्रभुपाद कहते थे ना कि लक्ष्मी नारायण के बगैर नहीं रहती, वो पतिव्रता स्त्री है। अब आने वाला ना वो दिन जिसको जिस दिन भूलते नहीं लक्ष्मी को, साल में एक दिन याद आती है, हे मैया अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, लेकिन नारायण को याद नहीं करते। तो धर्म होता है तो अर्थ आता है स्वतः ही, और ये अर्थ हमारी काम की ओर, फिर ये अंततः मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो लोगों ने धर्म और मोक्ष को इन चार पुरुषार्थों से बाहर निकाल दिया। अब क्यों नहीं हो पाता ये धर्म और मोक्ष, क्योंकि चार निषेधों का पालन नहीं करते। फिर से चार है, कौन से चार निषेध हैं? बहुत बार सुने होंगे आपने। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ मांसाहार, जुआ, हाँ हाँ अवैध संबंध और हाँ नशा करना। तो ये चार निषेध का पालन नहीं करते हैं, इसलिए चार पुरुषार्थ नहीं हो पाता, और चार पुरुषार्थ नहीं होता इसलिए हमारे चार बंधन नहीं कटते। ये चार की श्रृंखला है पूरी पूरी की पूरी। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आ रहे हैं या आ चुके हैं, और वो जब इन नियमों का पालन करते हैं, इसको अपना रहे हैं धीरे धीरे जब अपने जीवन के अंदर, तो कई बार वैराग्य का भी अहंकार आना शुरू होता है। लोग कहते हैं चार साल हो गई चाय नहीं पी मैंने, तो वो वैराग्य का भी अहंकार आ जाता है कई बार कि चार साल से चाय नहीं पिया, देखो कितना बड़ा महान काम किया मैंने। तो प्रभुपाद जी के पास आके एक व्यक्ति ने कहा, मैं स्वामी जी वेजिटेरियन हूं बाय बर्थ, है ना, मैंने जन्म से मांस नहीं खाया। तो प्रभुपाद ने कहा फिर क्या, बंदर भी शाकाहारी होता है जन्म से, तो क्या वो भक्त हो जाता है? वो बंदर शाकाहारी है जन्म से, तो इसका मतलब भक्त तो नहीं हो जाता। तो सिर्फ वेजिटेरियन होना ही तो बहुत काफी नहीं है। तो अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, हम गंभीर हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो फिर हमें क्या करना होगा सोला माला। एक बार मुझे याद है सोला माला से, एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, बोले स्वामी जी ये आप सोला माला ही क्यों करने को बोलते हैं लोगों को? प्रभुपाद कहते हैं मेरा भी यही प्रश्न है, सोला माला ही क्यों, 17 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? वो कम से कम कोटा बताया जो आपने बताया ना। तो भगवान सात्वताम पति को प्राप्त करना है तो श्रोतव्यश कीर्तितव्यश देहेश पूज्यश, ये चार काम करने होंगे, और कब तक? नित्यता, नित्य काल के लिए। तो यहां पे जो कर रहे हैं वही भगवान के धाम में भी करना है जाके। तो ये प्रैक्टिस हो रहा है भगवान के धाम में करने के लिए जो यहां कर रहे हैं हम सब। और जब ये चार काम होंगे नित्यता, इसीलिए अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं अता मन को निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगाए रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं समाज में, कोई परिवार की, कोई देश की, कोई समाज की, कोई माता पिता की, कोई देवी देवताओं की, भक्ति तो सब कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भक्ति नहीं कर रहे, सब भक्ति में तो लगे हैं। लेकिन इन सारी भक्तियों का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? काम और अर्थ। ये सारी भक्ति इन दो उद्देश्यों तक लेकर जाती है, अर्थ और काम। इसीलिए कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेवम सर्वम इति कि कृष्ण सर्वमिति सब कारण के कारण है। तो बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा होगा जो इस स्तर पे होगा जो कृष्ण को सब कारणों का कारण मानेगा, कि वो भगवान की भक्ति निरंतर नित्यदा कर पाएगा। हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह नहीं, मेरी तरह कदा कदा नहीं, वो नित्य दाम में होगा भगवान की भक्ति में। तो इसीलिए ये भक्ति भगवान की निरंतर होनी चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कीर्तनीय कदा हरि, एकदा हरि, क्या कहा, सदा सदा। सदा मतलब हमेशा हमेशा। आप में से कितने लोग, कृष्ण भी कहते हैं ना मन मना, मुझ में मन लगाओ, और आज मन की बात हो रही है यहां पे। तो कितने लोग आप में से हमेशा कृष्ण को स्मरण रख पाते हैं, 24 घंटे कृष्ण को भूल नहीं पाते, कितने महात्मा हैं यहां पर, दो हाथ, 24 घंटे, वो है नित्यता कि कृष्ण को हम हमेशा ना भूल पाते, ना भूल पाए। अब उन तीन महात्माओं की बात नहीं कर रहे जिन्होंने हाथ खड़ा किया, नित्यता जो कर पा रहे हैं, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं मेरे जैसे, है ना। तो जो नित्यता नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हम हमेशा कृष्ण को स्मरण रख पाते, क्या कारण है कि हम भगवान की भक्ति नित्यता नहीं कर पाते? कोई आप में से उत्तर देना चाहेगा? हाँ जी, मन चंचल है, ठीक कह रहे हैं। कोई और? हाँ प्रभु जी, पीछे बैक साइड। हाँ, भगवान से प्रेम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, काम, काम हमें भगवान की भक्ति नित्यता नहीं करने देता, ऐसा कह रहे हैं जी? हाँ, एक 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 करके ना ये बता रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ जी, सांसारिक बंधनों में है, अच्छा ठीक है। और कोई? हाँ प्रभु जी, तीन गुण में बंधने के कारण, अच्छा ठीक है। और कोई? जन्म, हाँ। तो आपकी सबकी बातें ठीक हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप सब, लेकिन हम मुख्य कारण की बात कर रहे थे। तो मुख्य कारण किसी ने पहले कहा, क्या, मन, जिसकी आज बात हो रही है, ये मुख्य कारण है कि मन एक बड़ा विशेष जंतु है। इसकी क्या विशेषताएं आप जानते हैं? ये वो सोचेगा जो आप सोचना नहीं चाहते, और वो नहीं सोचेगा जो आप सोचना चाहते हैं। ये मन की विशेषता है। अगर आप एक घंटा, बस सिर्फ एक घंटा बैठ जाओ और एक नोटपैड अपने सामने रख लो, और आपको बस ये करना है कि एक घंटे में मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि अगर 8 बजे सुबह बैठे तो जो विचार था 9 बजे उसका बिल्कुल विपरीत विचार होगा आपके मन में। तो ये मन की विशेषता, तो ये हमें वो सोचने और वो करने के लिए कहेगा जो हम सोचना नहीं चाहते, जो करना नहीं चाहते, और वो ना सोचने देगा ना करने देगा जो हम चाहते हैं करना। इसीलिए मन के दो कार्य शास्त्र बताते हैं, संकल्प और विकल्प, कि ये संकल्प करता है फिर उसका विकल्प निकालता है, फिर विकल्प करता है फिर संकल्प निकालता है। लेकिन हमारी परिस्थिति की कठिनाई और भी बढ़ जाती है, वो इस वजह से क्योंकि ये मन किस में है, कहां है ये मन स्थित? अरे भौतिक जगत में तो है, उससे पहले इसका आवास कहां है? सूक्ष्म शरीर कहां रहता है? हां, कहां? स्थूल शरीर में भाई, सीधी सीधी बात करूं। इस शरीर के अंदर ही है ना ये सूक्ष्म शरीर। ये शरीर क्या आध्यात्मिक है, कैसा है? भौतिक है ये शरीर। तो मन कहां है? भौतिक शरीर में। और ये भौतिक शरीर कहां पर है? हाँ, भौतिक जगत में, और वो भी कौन से युग में, आप समझे कितनी बड़ी कठिनाई है। ये बाधा की डिग्री जो है ना बढ़ गई है कहीं मैनी फोल्ड्स, कि ये मन भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में, और वो भी कलयुग में। इसलिए क्या समस्या है हमारे लिए, इस मन को हम निरंतर नहीं लगा पा रहे। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाना है, कि निरंतर इसीलिए नहीं हो पा रहा। इसीलिए नीति शास्त्र में बड़ा सुंदर श्लोक आता, कहते हैं मर्कटस्यासुरापाना वृश्चिका दंत तत्क्षणा तदंतर्भूत संचार यद्वा गत्वा भविष्यति। तो मन की तुलना यहां एक बंदर से की है। बंदर का कैसा स्वभाव होता है, अगर बंदर को बोलो हे बंदर तुमको यहां बैठना है, हिलना नहीं है, तो जैसे ही गर्दन घुमाओगे गुलाटी लगाएगा फिर। तो ये मन की तुलना एक बंदर से की, और कैसा बंदर, मरकटस्या, मरकट बंदर होता है ना, मरकटस्या सुरापान, उसने क्या पान किया, सुरा का शराब पिया हुआ है। एक बंदर अगर नशा कर ले तो वो क्या करेगा, वैसे ही बंदर है, और वो नशा कर ले तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, अब आप सोचो। मरकटस्य सुरापान, और यही नहीं है, वृश्चिका दंत तत्क्षणा, आप में से कभी किसी को बिच्छू ने काटा है? किसी को कैसा अनुभव होता है प्रभु जी, बिच्छू काटते कैसा अनुभव होता है, भयंकर दर्द होता है। तो ऐसा बंदर जिसने सुरापान किया हुआ है, उसे वृश्चिका बिच्छू भी काट ले, वो पहले बंदर है, उसने सुरापान कर लिया और उसे वृश्चिका ने भी काट लिया, और इतना ही नहीं, तदंतर भूत संचार, उसमें भूत घुस जाए एक। तो एक ऐसा बंदर जो नशा किया हुआ है, जिसे बिच्छू ने काटा है और उसमें एक भूत भी प्रवेश कर लिया है, वो मन है हमारा। अब आप कल्पना कर सकते हैं किस जंतु को हम लेकर बैठे हैं अपने साथ, कैसे जंतु के साथ जीवन जी रहे हैं हम। ये हमारे मन की अवस्था है, ये हमारा मन है। तो इसीलिए ऐसा मन कैसे निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगेगा, कैसे वो निरंतर कृष्ण भावनामृत में रह सकता है, नहीं संभव ना। तो आप सोचिए, इस मन को कृष्ण भावनामृत में लाना इतना सरल नहीं है। शरीर को लगाना आसान है, इसीलिए बाह्य परिवर्तन भक्ति में आने के बाद तुरंत आ जाता है। लोग अपना हुलिया बदल लेते हैं, मेरे जैसे बाल कटवा लेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, बाह्य परिवर्तन जल्दी आता है एकदम तुरंत, इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं है। इसीलिए एक पीछे हम एक डॉक्टर से मिले थे प्रचार के दौरान, तो वो हमें कह रहे थे कि देखो आपकी भगवद गीता में लिखा है कि विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, आप लोग तो यज्ञ नहीं करते हो। तो वो आर्य समाज से थे, कहते आप लोग तो यज्ञ नहीं करते हो, क्यों, आप खुद अपनी भगवद गीता में ऐसा दिख रहे हो अनुवाद कि यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ नहीं करते हो, क्यों मुश्किल होता है क्या, हरि नाम लेना आसान है, इसलिए आसान काम को अपना लिया आपने और मुश्किल काम यज्ञ करना उसको नहीं अपनाया। ये जो कर्म कांड है ना, हालांकि आप देखेंगे तो पूरा समाज आज कर्म कांड के पीछे भाग रहा है, ये व्रत रखो, इतने सुबह उठ के ऐसा स्नान करो और 3 घंटा पूजा करो और 7 साल के लिए करो और एक विशेष दिन में करो तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा, कई प्रकार के कर्म कांड, जैसे अनेक प्रकार के कर्म कांड, आज पूरा समाज भाग रहा है इन कर्म कांड के पीछे, जबकि आप देखेंगे कर्म कांड को करने में कितनी तपस्या है, आसान नहीं है कर्म कांडों को करना, बहुत तपस्या का जीवन है कर्म कांड को करना। तो वो लोग कर पाते हैं, लेकिन आप उनको बोलो आप हरि नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये भागवत गीता सुनो पढ़ो,
और कृष्ण प्रसाद पाओ कितना सरल है। तो बहुत कम लोग इस प्रोसेस को अपनाने वाले हैं और आप देखेंगे तो इतनी अधिक मात्रा में लोग कर्म कांड के पीछे भाग रहे हैं। आज वो कुछ समय आता है पानी लेने जाते हैं, वो हरिद्वार में लोग ना गंगा जल लाते हैं, पैदल जाते हैं कंधे पे रख के, कितने हजारों लाखों की संख्या में होता है। तो कर्म कांड को में इतना मेहनत है, इतना संघर्ष है, उसको करते हैं लोग, लेकिन ये इतना सरल रास्ता है कृष्ण भावनामृत का, लेकिन उसको नहीं करते। आप जानते हैं ये लगता सरल है कृष्ण भावनामृत, लेकिन सरल नहीं, कर्म कांड से ज्यादा कठिन है। कैसे? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में मन को लगाना होगा और कर्म कांड में सिर्फ शरीर लगाया जाता है, मन नहीं लगाया जाता। शरीर लगाना आसान है और पूरी दुनिया शरीर लगा रही है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का मतलब है यहां शरीर नहीं, मन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप वहां नहीं जहां आपका शरीर है, आप वहां हैं जहां आपका मन है। तो अगर आप गणना करें यहां कितने लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो निकल आएगा 250-300 लोग बैठा है। लेकिन क्या 300 लोग यहां हैं? 300 लोगों के शरीर तो हैं, लेकिन 300 लोग शायद यहां नहीं हैं। ठीक है कि गलत है? ये 300 लोगों के शरीर यहां बैठे हैं, लेकिन आप वहां नहीं जहां आपका शरीर, आप वहां हैं जहां आपका मन है, जहां आपका मन है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत को अपनाने वाले जो हैं कम लोग हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे ये डायमंड है, हीरा खरीदना हर एक की बस की बात नहीं है। चांदी तांबा हर कोई ले सकता है, वो कर्म कांड के समान है। तो दुनिया भाग रही है उसके पीछे आज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कुलीना ग्राम के जब वासियों से मिले तो उन्होंने पूछा, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव कहते किसको हैं, भक्त कहते किसको हैं? तो चैतन्य महाप्रभु परिभाषा देते हैं, कहते हैं कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने सही वैष्णव श्रेष्ठ भज तार चरने। कि जिसके मुख से निरंतर क्या निकले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निरंतर निकले। जितने महाप्रभु एक बार क्या, उन्होंने जीभ के ऊपर उसको फोल्ड किया और उसके ऊपर दातुन से पकड़ा हुआ था। उनके पास एक छोटा बच्चा आया गोपाल, तो गोपाल कहता है महाप्रभु ये आपने जीभ को क्यों दबाया, क्यों हुआ है? तो महाप्रभु कहते हैं गोपाल ये मेरी जो जीवा है ना, ये बहुत मुझे तंग करती है, ये हर समय कृष्ण का नाम लेती है। मैं शौचालय में जाता हूं तो वहां भी कृष्ण का नाम लेती है ये, तो इसीलिए मैंने दातुन से इसे दबा रखा है ताकि ये बोले नहीं। तो गोपाल कहता है महाप्रभु अगर आपको शौचालय में मृत्यु आ गई तो? तुझे देने महाप्रभु कहते हैं हां, अगर वहां मृत्यु आ गई तो फिर? तुझे देने महाप्रभु कहते तुम गोपाल नहीं हो, तुम गोपाल गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है आज। तो सही वैष्णव श्रेष्ठ, वो वैष्णव श्रेष्ठ है जिसके मुख से हमेशा कृष्ण का नाम निकलता हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु यहां कह रहे हैं निरंतर, निरंतर मतलब बिना अंतर, बिना अंतर। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे थे, नित्यदा, नित्यदा का मतलब क्या है, निरंतर। और चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं निरंतर, और प्रभुपाद भी तात्पर्य में कह रहे हैं अतः एव मन को कृष्ण भावनामृत में निरंतर लगाना चाहिए। ये निरंतर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये बड़ा सरल है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। निरंतर, बिना अंतर के, लेकिन अभी हमारे जीवन में और हमारे भगवान और हमारे बीच में निरंतर नहीं है, अंतर है, बहुत अंतर है हमारे और भगवान के बीच में। अभी वो निर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा अंतर कितना नापा नहीं जा सकता, इतना अंतर है हमारे और भगवान के बीच में। ऐसे अंतर को मेजर नहीं कर सकते, आप नाप नहीं सकते, ये इतना अधिक मात्रा में अंतर है। प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते थे, कहते थे कि एक राजा कृष्णचंद्र थे, और राजा कृष्णचंद्र का एक विदूषक थे गोपाल बान। विदूषक समझते हैं कि जो राजा को, जब राजा बहुत स्ट्रेस्ड होता है, बहुत तनाव में है राजा के काम को करके सारा दिन, तो कुछ ह्यूमरस बात करता है वो आके राजा के पास, कुछ मजाक करता है राजा के साथ, तो राजा को हंसाता है। विदूषक का काम है राजा को हंसाना, उनको उसका मनोरंजन करना अपनी बातों से, ताकि राजा का जो कार्यभार संभालने का जो स्ट्रेस था वो दूर हो जाए। ऐसे विदूषक होते थे राजाओं के पास। तो वो विदूषक थे गोपाल बान। तो एक दिन राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल बान से बोला, गोपाल एक बात बताओ, तुम्हारे में और मूर्ख में कितना अंतर है? गोपाल बान ने एक मेजरिंग टेप लिया, मेजरिंग टेप होता ना फीता, और राजा और अपने बीच की दूरी नापनी शुरू कर दी। राजा 3 फुट, मुझ में और एक मूर्ख में 3 फुट का अंतर है बस। तो अंतर का मतलब दूरी, डिस्टेंस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे और भगवान के बीच में सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है भौतिक इच्छाओं का, मटेरियल डिजायर्स का। ये भौतिक इच्छाएं हम में और भगवान में अंतर पैदा कर देती हैं, और जब तक ये भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित नहीं होती, हम में और भगवान में अंतर हमेशा बना रहेगा। और जितनी मात्रा में हमारी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक कृत हो गई हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई हैं, उतनी मात्रा में हमारे और भगवान के बीच में अंतर कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो जितनी मात्रा में आप भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक कृत करते जाएंगे, उतनी मात्रा में हम भगवान के करीब आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे। और प्रभुपाद इस भगवत गीता की भूमिका में लिखते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, ये आध्यात्मिक साहित्य है, जैसे कि भगवत गीता, ये हमारे भौतिक विचारों को आध्यात्मिककृत करने में बहुत सहायता करता है। तो इसीलिए ऐसे शास्त्रों का वर्णन नियमित रूप से सुनना चाहिए भक्तों के बीच में आके, और इसे निरंतर पढ़ना भी चाहिए अपने जीवन के अंदर। एक मैंने वीडियो देखा था, एक डिवोटी ने बनाया, उसने कंपैरिजन किया था भगवत गीता का मोबाइल फोन से। तो कहता जैसे मोबाइल फोन को हम कहीं नहीं भूलते, भगवत गीता को भी नहीं भूलना चाहिए कहीं। जैसे मोबाइल फोन कहीं भी जाए कैरी करते हैं, वैसे भगवत गीता कैरी करना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन में मैसेजेस पढ़ते हैं, तो भागवत गीता में भी मैसेजेस रोज पढ़ने चाहिए। अगर कहीं मोबाइल छूट जाए, जैसे घर में छूट जाए तो लोग वापस आते हैं काम से लेने के लिए, मोबाइल रह गया मेरा, वैसे अगर भागवत गीता कहीं छूट जाए तो वापस आना चाहिए लेने के लिए। तो जितना मोबाइल फोन हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना भगवत गीता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस स्टेज पे समझने के लिए उसे मोबाइल फोन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे बीच और भगवान के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? भौतिक इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का। अब समझने की दृष्टि से अगर हम कहें कि हमारे और भगवान के बीच में अंतर है 1 मील का, 1 मील की दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, तो ये 1 मील की दूरी हमेशा एक मील की नहीं रहेगी, या तो ये कम होगी या बढ़ेगी। ये हमेशा एक मील की नहीं रहने वाली, मतलब हम जितने भगवान से दूर हैं उतने हमेशा दूर नहीं रहेंगे, या तो और दूर हो जाएंगे या नजदीक आते जाएंगे। तो इसीलिए ये भक्ति का रास्ता बहुत डायनामिक है। जिस स्थान पे आप खड़े हैं उस स्थान पे खड़े नहीं रहेंगे हमेशा, या बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। ये चुनाव हमारे पास है कि चाहते हैं हम क्या, पीछे या आगे आना। क्योंकि भौतिक इच्छाएं जितनी हैं उतनी नहीं रहेंगी, ये निरंतर बढ़ती जाएंगी। और सबसे अद्भुत बात कि ये भौतिक इच्छाओं की जो पूर्ति है, ये भौतिक इच्छाओं को शांत नहीं करती और बढ़ा देती है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बुझती नहीं है, बढ़ती है। उसी प्रकार से इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भौतिक इच्छाओं को शांत नहीं करती है और अधिक मात्रा में बढ़ाती जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाएगा तो हम अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन भौतिक इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। तो एक प्रकार से जब हम भौतिक इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं तो हम अपने और भगवान के बीच में दूरी को कम नहीं कर रहे, हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए बड़े महान वाक्य में कहा गया है, आशानाम मनुष्यानाम कष्टदाश्वरे श्रृंखला या बद्ध प्रदावंती मुक्त तिष्ठति पंगुवत। ये आशानाम मनुष्यानाम, ये जो आशा है ना, ये क्या है, कष्टदाश्चर्य श्रृंखला। श्रृंखला होता है चेन, चेन कैसी चेन, आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अद्भुत, आश्चर्य में डालने वाली चेन कौन सी है, एक ऐसी आश्चर्य में डालने वाला चेन है। चेन का क्या स्वभाव है, अगर मान लो किसी को चेन से बांधा जाए तो वो व्यक्ति चल फिर सकता है, नहीं जा सकता ना, उसका मूवमेंट रुक जाएगा क्योंकि चेन से बांध दिया गया है ना। लेकिन ये जो चेन की यहां बात की जा रही है, उस चेन से बंधा हुआ व्यक्ति क्या करता है, या बद्ध प्रदावंती, ऐसा व्यक्ति जो आशाओं की श्रृंखला चेन से बंधा हुआ है वो रुकता नहीं, वो भागता है। और जो आशा की चेन से मुक्त है वो कैसा है, मुक्त तिष्ठति पंगुवत, वो पंगुवत, वो शांत रहता है, वो भागता नहीं। अद्भुत चेन है ना, कि जो बंधा है आशा की चेन से वो भाग रहा है, और जो आशा की चेन से खुला है वो शांत बैठा है, वो भाग नहीं रहा। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते थे, आशा ही परमम दुखम, ये आशा ही हमारे परम दुख का कारण है, कोई और नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं अनुवाद में, ये मन शत्रु है हमारा उसके लिए जिसने इसको विजय नहीं किया। तो आशा ही परमम दुखम, दुख कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, क्योंकि आशाओं के कारण ये दुख है। निराशा नाम ही परमम सुखम, और जिसको आशा नहीं है, निराशा, वो परमम सुखम, वो परम सुख के अंदर जीवन जी रहा है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे और भगवान के बीच का जो अंतर है वो भौतिक इच्छाएं हैं। तो अगर हम कृष्ण भावना मृत में मन को निरंतर कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हम जीवन में कुछ भी लाते हैं अपने जीवन के अंदर, तो बेस्ट लाते हैं या वर्स्ट लाते हैं, क्या, बेस्ट मतलब उत्तम, बेस्ट का मतलब उत्तम होता है ना, उत्तम, जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं माताजी तो आलू वाले से पूछते हैं क्या, भैया आलू अच्छे हैं ना? अब मेरे को आज तक इस प्रश्न का मतलब समझ में नहीं आया। कभी बोलेगा सब्जी वाला नहीं, तीन दिन पुराने हैं, बासी हैं, खराब है, लेना मत। फिर भी पूछते हैं ना आलू अच्छे हैं ना, जैसे वो कहेगा खराब है। तो मतलब सब्जी भी चाहिए तो उत्तम चाहिए, सब्जी चाहिए तो उत्तम, हर चीज जीवन में उत्तम। पति चाहिए तो उत्तम, पत्नी चाहिए तो वो भी उत्तम, बच्चे चाहिए तो वो भी उत्तम, नौकरी उत्तम, पैसा उत्तम, एजुकेशन उत्तम, घर भी उत्तम, लेकिन भक्ति वो उत्तम नहीं चाहिए बस। बाकी सब उत्तम होना चाहिए जीवन के अंदर, भक्ति को छोड़ के। कपड़ा भी उत्तम, गाड़ी भी उत्तम, सब कुछ उत्तम। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अगर उत्तम भक्ति आप चाहते हैं तो उसका एक मूल्य है, और वो क्या मूल्य है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये मूल्य है उत्तम भक्ति का। कौन सी अभिलाषा? ऐसी अभिलाषा जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसको क्या करना है? शून्यम, जीरो। अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसीलिए जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो ये क्या है प्रार्थना? ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रार्थना है ना। हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें क्या, या आप हमारी सेवा में लगिए। हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप हमारी सेवा में लगिए। करते तो ऐसा ही है नहीं, करते तो ऐसा ही है कुछ, वरना फिर सेवा आती तो भागते, सेवा छोड़ के। सेवा आती तो नजर ही नहीं आते भक्त लोग, तो थोड़ा काम है, थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करेंगे प्रभु जी। सेवा मांगते तो फिर, जब भगवान सेवा देते हैं तो फिर करते, तो मांगते नहीं इसका मतलब। भगवान की सेवा नहीं मांगते, भगवान से अपनी सेवा मांगते हैं। हालांकि माता जी ठीक कह रही है, होना यही चाहिए कि हमें भगवान की सेवा मांगते हैं। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करवाते हैं लोगों से, या क्यों करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं ताकि हम और हरे कृष्ण का जप कर सके। इसलिए तो कृष्ण के नाम का लेने का मतलब क्या है? कृष्ण का और नाम लेना। कृष्ण की भक्ति करने से क्या परिणाम मिलेगा? कृष्ण की और भक्ति मिलेगी आपको। ये एक ऐसा परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें निरंतर सोचना चाहिए कि कैसे मैं कृष्ण के करीब और जाऊं, कैसे मैं कृष्ण के और करीब इस जीवन के अंदर जाऊं। ये निरंतर हमारे विचार होने चाहिए। निरंतर हम सोचते हैं कि ऐसे कितना पैसा और ज्यादा बनाऊं, सोचते हैं कि नहीं सोचते? बच्चे सोचते हैं निरंतर कैसे जल्द ज्यादा मार्क्स लेकर आऊं। तो उसी तरह से हमें निरंतर सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण के पास कैसे जाऊं। जैसे प्रभुपाद निरंतर सोचते थे कि कृष्ण के संदेश को कैसे मैं प्रचार करूं, निरंतर सोचते रहते थे। एक डॉक्टर मिश्रा थे, योगी थे, मायावादी योगी। प्रभुपाद उनके आश्रम में रुके कुछ दिन, जब वो न्यूयॉर्क में 1965 में थे, अभी इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, तब प्रभुपाद उनके आश्रम में कुछ समय रुके, दो महीना तीन महीना कुछ। तो प्रभुपाद कहते हैं डॉक्टर मिश्रा आपको कृष्ण के संदेश का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो पिता थे उनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा और आप वो डॉक्टर मिश्रा, तो इसीलिए आपको चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो जो भक्त हैं उसका मतलब क्या है? वो निरंतर कृष्ण के बारे में सोचता है, या फिर निरंतर कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाने में विचार करता है या लगता है। ये भक्त का मतलब है। तो ऐसा जीवन प्राप्त करना चाहिए। और जब ये कर पाएंगे तब फिर क्या होगा, अतः मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगेगा हमारा। और उसका सरल उपाय है चार काम, क्या एक एक करके रिपीट करेंगे, श्रोतव्यश, कीर्तितव्यश, ध्येयस, पूज्यस, और कब, थोड़ा समय के लिए, मंडे के मंडे, हाँ नित्यदा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो अगर ये चार काम नित्यदा करेंगे तो कौन से चार बंधन छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इन चार बंधनों को त्यागने के लिए कौन से चार काम करने पड़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन चारों को नहीं कर पा रहे हैं, कौन से चार नियम ना पालन करने के कारण, हाँ मांसाहार करना करने के कारण नहीं कर पा रहे हैं, हाँ नशा करने के कारण, जुआ खेलने के कारण, अवैध संबंध बनाने के कारण। तो ये चार नियम पालन करेंगे तो चार पुरुषार्थ होंगे, चार पुरुषार्थ होंगे तो चार बंधन कटेंगे, और ये चार एक्टिविटीज किसके लिए, भगवान सातपतामपति के लिए। और कब तक, नित्यदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय और ध्यानपूर्वक श्रवण के लिए। कोई जिज्ञासा या कोई टिप्पणी, जी माता जी, भौतिक इच्छा के कारण, परेशानी को भगवान के सामने रखना, क्या ये भौतिक इच्छा है, यही प्रश्न है आपका। बैठ जाइए। तो इनका प्रश्न है कि भौतिक हमारी समस्याएं, भौतिक समस्याएं बोली ना आपने, तो भौतिक समस्याएं भगवान के सामने प्रस्तुत करना, क्या ये भौतिक इच्छा कहलाती है। पहले ये समझना चाहिए कि ये जो समस्या है जीवन में ये क्यों आती है, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। पहले हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है, तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं या कर आए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में निश्चित रूप से आएंगी, उसे रोका नहीं जा सकता। अब वो कर्मों की प्रतिक्रियाएं जो हमने ही की थी हमारे सामने अब आ रही हैं जीवन में, तो इससे हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को बदलें और ऐसे कर्म करें जिससे हमें इस कर्म बंधन में दोबारा ना फंसना पड़े। और वो ये चार काम आज हमने चर्चा की आपके साथ, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, देहस, नीत, पूज्य, नित्यदा। लेकिन जब हम भौतिक समस्याओं का समाधान भगवान से मांगना चाहते हैं, हालांकि भगवान भगवत गीता में दो बातें कहते हैं, एक स्थान पे कहते हैं कि जब तक हमारे पूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाते तब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते, और दूसरी तरफ 18वें अध्याय में आके इस बात को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वं सर्व पापे भ्यो। अगर आप मेरी पूर्ण शरणागति लेंगे तो मैं आपके सारे पापों का नाश कर दूंगा। तो पापों का नाश होगा तो पापों की प्रतिक्रियाओं का भी नाश होगा, प्रतिक्रियाओं का नाश होगा तो फिर भौतिक समस्याओं का भी नाश होगा। तो भगवान के सामने जो मांगना चाहिए वो मांगना ये चाहिए, प्रभुपाद कहते थे कि पता चलता है कैसे कि हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो बताते थे कि एक चीज देखने से, कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, राधा पार्थारती जी के सामने जाते हैं, गौर निताई के सामने जाते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के सामने जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनसे? कि अगर हमारे मन में ये विचार आते हैं उनके सामने जाके कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, तो प्रभुपाद कहते थे अगर ये विचार आता है तो आप भक्ति में बढ़ रहे हैं आगे, और अगर ये विचार नहीं आता इसका मतलब प्रगति नहीं हो रही भक्ति में। आप समझ रहे हैं इस बात को? कर्मों की प्रतिक्रियाओं को पलटा नहीं जा सकता। तो भक्ति हमारे कर्मों की प्रतिक्रियाओं को जला देती है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई परिवार में बीमार है हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह सकते हैं भगवान से कि हमें हमेशा याद रहे कि हमें आपकी भक्ति करनी है, ये घटना हमें इस बात को भुलाए ना, ये घटनाएं हमें स्मरण कराने आ रहा है। परीक्षित महाराज की हम बात कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो उन्होंने ये जाके तो नहीं कहा देखो मुझे श्राप मिल गया और छोटी सी बात पे श्राप दे दिया और इतना भयानक श्राप दे दिया तो मैंने क्या गलती करी है, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। उन्होंने क्या किया, इस अवसर का लाभ उठाया। तो ऐसी समस्याएं परीक्षित महाराज कहते हैं, जैसे पिता कई बार क्या करता है, घर आता है काम से तो एक मुखौटा होता है, वो मुखौटा पहन के क्लाउन का ड्रैगन का अपने बच्चे को दिखाता और डराता है। बच्चा पिता देखता है पिता ने मुखौटा पहना है हालांकि, और पिता पहचाना नहीं जा रहा है क्योंकि उसने अब क्लाउन ड्रैगन किसी का मुखौटा पहन लिया, तो बच्चा देख रहा है लेकिन बच्चा डरता नहीं है, हंसता है, ठीक है ना, वो हंसता है डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता है कि इस मुखौटे के पीछे मेरे पिता का असली चेहरा है। उसी तरह से इन परेशानियों के पीछे एक असली चेहरा है भगवान का, और यही कहा था परीक्षित महाराज ने कि ये जो श्राप है कृष्ण श्राप के रूप में मेरे जीवन में आए हैं। परीक्षित महाराज ने कृष्ण का दर्शन किया था उतरा अपनी माता के गर्भ में पहली बार, और इसीलिए उनका नाम पड़ा था परीक्षित। परीक्षित का मतलब होता है एग्जामिनर, जो ढूंढ रहा है कुछ, किसको, जीवन भर वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे क्योंकि कृष्ण का दर्शन किया था अपनी मां के गर्भ में उन्होंने पहली बार। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि कृष्ण मेरे को दर्शन देने आए मेरी मां के गर्भ में जब मैं था तब, और अब फिर से कृष्ण मेरे जीवन में आए हैं, लेकिन अब कृष्ण ने कौन सा रूप लिया है, श्राप का। बहुत बड़ी बात है ना, तो ये परेशानियां कृष्ण हैं ऐसा सोचना चाहिए। क्यों कृष्ण परेशानी दे रहे हैं, ताकि हम इस भौतिक जीवन से विरक्त हो जाएं और कृष्ण से आसक्त हो जाएं, इसीलिए वो दुख दे रहे हैं, इसीलिए परेशानी दे रहे हैं। जैसे मां प्रभुपाद कहते थे कभी बच्चे को प्रेम करती है और कभी चांटा लगाती है, लेकिन मां जब बच्चे को मारती है तो बच्चे को द्वेष के कारण नहीं मारती, किस कारण से पिटाई करती है, सही मार्ग पे लाने के लिए। उसी प्रकार से भगवान कभी प्रेम करते हैं और कभी चांटा लगाते हैं परेशानी देके, किस लिए, सही रास्ते पे लाने। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्षमा चाहता हूं ऐसा कहते हुए, लेकिन बात तो सही है। अगर ऐसे मानते होते तो इस कलयुग में भगवान के बगैर अब तक पड़े होते हैं यहां। भगवान सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, फिर भी नहीं गए हम, और अभी भी लगे हुए हैं कि इस भौतिक जगत से जाएं नहीं, यहीं रहें इस भौतिक जगत में, इस जेल में रहें, अपनी सजा और बढ़ाएं यहां पर रहकर। तो ये भगवान का एक रूप है, ये परेशानियां हमारे जीवन में जो हमें इस भौतिक जगत की वास्तविकता दिखा रही हैं, कि जिससे भी आप आसक्ति करेंगे वो आपको धोखा देगा ही देगा। यही इस भौतिक जगत का स्वभाव है। जिसका आश्रय लेंगे वो आपको धोखा देगा। तो हमारी योजनाएं एक के बाद एक फ्लॉप होती जाएंगी इस भौतिक जगत में, और वो हमें हताशा के स्तर तक लेकर आएंगी, ताकि वहां आकर हम जिज्ञासा करें कि मैं नहीं चाहता कि मुझे दुख आए, लेकिन फिर भी ये बिन बुलाए मेहमान की तरह दुख क्यों आ रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, चार तरह के लोग मेरी शरण लेते हैं, जिसमें पहले बताते हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी कि दुखी, अर्थार्थी, पैसा चाहते हैं, जो ज्ञान रखते हैं कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, और साथ में जिज्ञासु, देखें कौन है भगवान। तो 99% कलयुग में कौन आते हैं भगवान की शरण में? आर्थ, दुखी। 99.9। तो ये भी भगवान की कृपा है कि अगर दुख नहीं होता जीवन में तो भगवान का आश्रय नहीं लिया होता कभी। तो जब दुख आता है तो भगवान के और करीब आते हैं। पुण्य लोग, जिनके पास कुछ पुण्य है, वो भगवान का आश्रय और गंभीरता से लेते हैं। एक भक्त बता रहे थे अपना विवरण, हालांकि समय काफी हो गया है, कंक्लूड करना चाहूंगा इस स्टोरी से। एक भक्त बता रहे थे कि वो वैन में बैठे थे और नया नया वैन लिया था उन्होंने, बिल्कुल ब्रांड न्यू वैन। मंदिर से निकले और वैन लेके, तो जहां जाना था रेलवे फाटक था, बीच में रेलवे लाइन आता ना बीच में कई बार क्रॉसिंग के लिए, तो रेलवे फाटक था। तो रेलवे फाटक अभी नीचे डाउन जा रहा ने वाला था, उन्होंने कहा निकाल लूं फटाफट वैन को। तो वैन को निकाल लिया और जैसे ही निकाला तो पटरी के ऊपर आके वैन बंद हो गया और दूर से विसल आ रहा है ट्रेन का, और पटरी के ऊपर वैन। अब ऐसी परिस्थिति में कई बार होता है ना कि दिमाग चलना ही काम बंद कर देता है। वो स्टार्ट कर रहे हैं, इग्निशन दे रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा, और ट्रेन पास आता जा रहा है और वैन खड़ा है पटरी के ऊपर। अब इस समय में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम होना चाहिए कि नहीं? कृष्ण का स्मरण अंतकाल में, पत्नी याद आ रही थी, बच्चे याद आ रहे थे, उनका क्या होगा? अभी तक विल नहीं लिखा है मेरा, बाद में झगड़ा होने वाला है सबका, वो काम छूटा, ये काम छूटा, और ट्रेन पास आती जा रही है, ये सब स्मरण आ रहा है एकदम। अब कैसे पता चला? बच गए वो बाद में, तभी पता चला ये सब उनकी बातें, मन में क्या चल रही थी। लेकिन इस घटना के बाद वो बोलते हैं कि अब मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ स्मरण नहीं होता। इस घटना के बाद कि मृत्यु को इतने करीब से देखा कि एक पल में वो जीवन और मृत्यु का भेद था वहां पर बस। तो कृष्ण ने उनको गंभीर बनाने के लिए क्या कर दिया, ये देखो। और वो धन्यवाद देते हैं इस घटना को आज कि अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं आज भी, जैसे हम बाहर पहले कह रहे थे ना कि बाहर से परिवर्तन आसान है, अंदर से परिवर्तन बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो इस घटना को धन्यवाद देते हैं। तो आज जो हमें कठिनाइयां लग रही हैं, जब हम इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें लगेंगी। कहते हैं कि the obstacles which comes on our path becomes the stepping stone for success। जो रुकावटें हमारे मार्ग में आती हैं, ये हमारी सफलता के मार्ग में बढ़ने के लिए एक स्टेप बन जाता है कि उस पर चढ़ के हम सफलता तक पहुंच पाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे ऑब्स्टेकल देखें, बाधा, या स्टेपिंग स्टोन। किसके जीवन में बाधा नहीं थी? अरे और छोड़ो, भगवान राम उनके पिता दशरथ उनके जीवन में बाधा नहीं आई? जिसका पुत्र स्वयं भगवान हो उसके घर में बाधा है? हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए। नंद बाबा को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब गोकुल में कृष्ण आए उससे पहले, कृष्ण के आने से पहले सब कुछ शांति थी गोकुल में, सब बड़े सुख से जीवन जी रहे थे कई सालों से, लेकिन कृष्ण के आने के बाद सब अशांत हो गया गोकुल। एक के बाद एक असुर आने लगे, एक के बाद एक असुर आने लगे। अब आप बताइए, भगवान के आने के बाद शांति होनी चाहिए या शांति? लेकिन गोकुल वासियों के जीवन में क्या हो रहा था? लेकिन ऐसी परिस्थिति में गोकुल वासियों ने क्या किया? मंत्रणा कर रहे हैं ये कृष्ण की सुरक्षा कैसे की जाए, अपने लिए नहीं सोच रहे कि हमारे जीवन में बाधा दे, ये कृष्ण की सुरक्षा कैसे की जाए, ये रोज असुर आते हैं कृष्ण यहां पर गोकुल में। ये है भक्त की चेतना निरंतर। तो इन बाधा को आप बाधा के रूप में देख सकती हैं या फिर स्टेपिंग स्टोन। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन बाधाओं को कभी बाधा नहीं देखेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं सोचता था कि मैं बहुत पैसा बनाऊंगा और उस पैसा बना के कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का कुछ और ही प्लान था। उन्होंने इतनी कठिनाइयां दी मेरे जीवन के में कि मेरा बिजनेस फ्लॉप कर दिया, मुझे घर से बाहर घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, एक के बाद एक बाधा, यहां तक कि न्यूयॉर्क में भी जब प्रभुपाद गए तो जहां पर डॉक्टर मिश्रा के बाद प्रभुपाद जी ने एक कमरा किराए पे लिया, एक छोटा सा जगह, वहां पर भी चोरी हो गई। तो प्रभुपाद कहते हैं यह भी कृष्ण का संदेश था कि यहां से निकलकर मैं बौरी स्ट्रीट में जाऊं जहां प्रभुपाद ने हिप्पियों को प्रचार किया। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बाधा को स्टेपिंग स्टोन देखता है, बाधा नहीं देखता। इसीलिए भगवान कहते हैं धीरा स्तरा न मोहयति। जो धीर है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता। तो इसीलिए अधिक मात्रा में क्या करना होगा? श्रोतव्य, अधिक मात्रा में कीर्ति तव्यश, अधिक मात्रा में देहस पूज्यस करना होगा, ताकि ऐसी परिस्थितियों में हम कृष्ण को देख पाए, विचलित ना हो। अब जितना आहार लेंगे उतने ही शक्तिशाली होंगे ना। तो अगर आध्यात्मिक आहार इतना है और माया इतनी बड़ी, तो फिर शक्तिशाली तो माया रहेगी, वो बताएगी कि भाई कृष्ण का आश्रय नहीं लो, ये देखो ये परेशानी आ गई। तो इसलिए आहार ज्यादा लेना होगा कृष्ण भावनामृत का, और निरंतर लेना होगा, तब इन बाधाओं को बाधाएं नहीं देखेंगे आप कभी। यही विराम देंगे, आज अधिक समय ले लिया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपका। हरे कृष्णा।